परिचय मूल संस्करण। ईसा की 7वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी तक उड़ीसा में एक के बाद एक विशाल भव्य और कलापूर्ण मंदिरों का निर्माण हुआ, जो आज भी भुवनेश्वर, जगन्नाथपुरी और कोणार्क में तत्कालीन कला के साक्षी रूप खड़े हैं। इनमें से सर्वश्रेष्ठ मंदिर सूर्य देवता का देवालय कोणार्क में स्थित है। कोणार्क के देवालय के विषय में कतिपय ऐतिहासिक तथ्य विचारणीय हैं। एक तो यह कि मध्यकालीन उड़ीसा के मंदिरों की परंपरा में यह अंतिम भवन है। इसके बाद न जाने कैसे और क्यों उड़ीसा में उच्च कोटि और शैली मंदिरों का बनना ही बंद हो गया और मानो शिल्पियों के कुल ही तिरोहित हो गए। दूसरे, उस परंपरा के मंदिरों में स्थापत्य कल्पना और कला की विविधता में यह मंदिर पराकाष्ठा का द्योतक है। मानो वह शैली कोणार्क के निर्माण में अपनी चरमावस्था को पहुंची। तीसरे, जहां यह मंदिर पुरी और भुवनेश्वर जैसे नगरों में बनाए गए कोणार्क के लिए ऐसा स्थान चुना गया जिसके आसपास दूर तक आबादी नहीं थी। पुरी से 19 मील दूर समुद्र तट पर यह मंदिर स्थित है। चौथे, इस मंदिर के उपपीठ और दीवारों पर अंकित युगल मूर्तियां आधुनिक विचार से अत्यंत अश्लील हैं और उनका उद्देश्य समझ में नहीं आता। पांचवा और अत्यंत महत्वपूर्ण बात यह है कि मध्यकालीन उड़ीसा का अन्य कोई मंदिर इस खंडित और भग्नावस्था में नहीं है। यद्यपि यही सब के बाद में बना मंदिर का मुख्य अंश कोष्ठक में विमान टूट पड़ा है और कुछ विद्वानों का तो यह भी मत है कि मंदिर कभी व्यवहार में लाया ही नहीं गया। मंदिर का मुख्य भाग इस समय पत्थरों का ढेर है, उसका नट मंदिर भी धराशायी है। विशाल प्रांगण में ध्वस्त मूर्तियां और पाषाण खंड पड़े हैं, केवल बाकी है विमान से सटा हुआ जगमोहन यानी मंडप, जो एक विस्तीर्ण मेधी पर दीपक की अकेली लौ की भांति खड़ा है। पैराग्राफ चेंज। मंदिर क्यों टूटा, इस विषय में उड़ीसा में एक किंवदंती प्रचलित है जिसे अंततः ही मैंने अपने नाटक का आधार बनाया है। इतिहास का सहारा भी मैंने अल्प मात्रा में लिया है, फिर भी इस नाटक को पूर्णतया अनैतिहासिक नहीं कहा जा सकता। गंगवंशी महाप्रतापी राजा नरसिंह देव का उड़ीसा में राज्यकाल ईस्वी सन 1238 से 1264 तक माना जाता है और कुछ जागीरों के लेख पत्रों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि नरसिंह देव ने ही कोणार्क का निर्माण कराया। यह भी ऐतिहासिक सत्य है कि नरसिंह देव ने वंग प्रदेश में मुसलमान सूबेदारों को पराजित किया और गौड़ तक अपनी सेना को ले जाकर अनेक वर्षों तक वंग प्रदेश में ये यवनों से लड़ते रहे। नरसिंह देव के दरबार के प्रसिद्ध कवि विश्वनाथ कोष्टक में साहित्य दर्पण के रचयिता कोष्टक बंद ने अपनी अलंकार शास्त्र की पुस्तक एकावली में नरसिंह देव को यवनावनी वल्लभ कहकर संबोधित किया है। नरसिंह देव के मंत्रियों में प्रमुख थे पूर्वी चालुक्य वंश के राजराज। यह बात श्री कुर्मम के एक लेख से प्रमाणित होती है। पैराग्राफ चेंज। मैं अपने उड़िया मित्रों से एक धृष्टता के लिए क्षमा याचना करता हूँ। जिस लोकप्रिय किंवदंती के आधार पर उड़ीसा में श्री गोपबंधु दास के खंड काव्य धर्मपद, कार्तिक घोष के नाटक और अन्य रचनाओं का प्रणयन हुआ, मैंने उसका रूप इस नाटक में इतना बदल दिया है कि शायद वे उसे पहचान भी न पाए और रुष्ट भी हो कि क्यों मैंने एक ललित और करुण रस से पगी कहानी को इस रौंद रूप में प्रकाशित किया है। मैं अपना अपराध सहज ही स्वीकार करता हूँ। मुझे उस किंवदंती के करुण लालित्य ने आकृष्ट अवश्य किया, किंतु जिस विशाल और पुष्ट कल्पना का कोणार्क मंदिर परिचायक है और जिस संघर्ष प्रधान युग में उसका निर्माण हुआ, उसके मुकाबले में मुझे उड़िया किंवदंती के भावुक और विवश नायक नायिका छीड़ जचे। प्रणय की अटखेलियों और भाग्य के थपेड़ों के आधार पर कोणार्क के खंडहरों का सहारा ले एक रोचक कथापट प्रस्तुत कर देने से मुझे संतोष नहीं हुआ। मुझे तो लगा जैसे कलाकार का युग युग से मौन पौरुष जो सौंदर्य सृजन के सम्मोहन में अपने को भूल जाता है, कोणार्क के खंडन के क्षण में फूट निकला हो। चिरंतन मौन ही जिसका अभिशाप है, उस पौरुष को मैंने वाणी देने की धृष्टता की है। किंतु जब रूमानी कहानियों में बादल छूने वाली कल्पना पर आप प्रतिबंध नहीं लगाते, तो कलाकार के मानस में कुंडली मार कर सोए पौरुष ना की अनाहत फुत्कार की जो कल्पना मैंने की है, उसे समकालीन प्रगतिवाद की प्रतिध्वनि कहकर ही न दुत्कार दें। पेज 15। यह सही है कि व्यक्तिगत वैषम्य के साथ सामाजिक समस्याओं का गठबंधन मैंने किया है, किंतु इन दोनों के परे यूनानी दुखांत नाटक किसी भग्न रागिनी की प्रेरणा मुझे कलाकार के शाश्वत अंतर्दहन में मिली है, और यह नाटक उसी का प्रतीक है। परिशिष्ट में हिंदी नाट्य साहित्य और रंगमंच की गतिविधि और भविष्य पर जो विचार मैंने प्रकट किए हैं, उनका कोणार्क के वस्तु विषय और रूपरेखा से कोई सीधा संबंध नहीं है, क्योंकि कोणार्क पहले लिखा गया और यह निबंध बाद में, किंतु दोनों एक ही यज्ञ के लिए आहुति स्वरूप होने के कारण असंगत न माने जाएंगे। पटना कॉलेज की साहित्य परिषद में छात्रों, अध्यापकों और अन्य विद्वानों के सामने जब मैंने इस निबंध को पढ़ा, तो मुझे लगा कि शायद मेरे शब्दों ने श्रोताओं को इस विषय पर गंभीरतापूर्वक सोचने के लिए मजबूर किया। उसी उद्देश्य से यहाँ भी यह निबंध दे रहा हूँ। आशा है विद्वान पाठक मेरी निश्चयात्मक उक्तियों के बावजूद इसे पढ़ने का कष्ट उठाएंगे। मैंने जो कुछ लिखा है उस पर रंगमंच और नाट्य लेखन के तजुर्बे की छाप है, शास्त्रीय अध्ययन की नहीं। लेकिन शास्त्र के दामन और तजुर्बे के दाग न पड़े तो वह दामन नहीं पताका बनकर रह जाएगा। हमें तो दामन की जरूरत है, पताका की नहीं। जगदीश चंद्र माथुर, पटना, 1950।